جزاك الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو آخری درس ہوا تھا اس کتاب میں سے جمعے کے روز، اس میں ہم پیج نمبر 76 کے اوپر پہنچے تھے. جو آخری موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کسی شخص کے بارے میں اگر تردد ہو جائے، یعنی کنفرم نہ ہو سکے، کلیئرٹی نہ ہو سکے کہ وہ دائرہ اسلام میں باقی ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ پھر مسلمان معاشرے میں کیا رویہ رکھا جائے گا، کیا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا. تو اس میں حضرت نے امداد الفتاوی میں سے نقل کر کے فرمایا تھا کہ ایسا شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ شریعت کے اندر اسرائیلی روایات کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، یا خنثی مشکل کے ساتھ، یعنی جس کے نہ یعنی اسرائیلی روایات کا معاملہ کیا ہے کہ نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی تکذیب کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ ان روایات کی بات ہو رہی ہے جن میں کہ شریعت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہ پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے وہ نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تردید کی جا سکتی ہے. بھائی اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہوتی تو پھر تو ان کی ہم تکذیب کر دیتے، ختم بات، خلاص کہ بھائی نہیں ایسا ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. لیکن جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اب اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر حکم ہے. اسی طرح خنثی مشکل کے بارے میں بھی کہ جس کے جینڈر کی جو ہے نا وہ ڈٹرمینیشن نہ ہو سکتی ہو بایولوجیکلی، اس کی پیدائش ہی کے اندر جو ہے وہ ڈیفیکٹ تھا تو نہ میل کا پتہ چل سکتا ہے نہ فیمیل کا ڈسیشن لیا جا سکتا ہے، تو اب اس کے ساتھ شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا یہی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ایسا معاملہ رکھا جائے گا کہ نہ تو بے حیائی کو ترویج ملے، ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے نا یعنی بیسیکلی یہی ہے، یعنی ایسے معاملات رکھے جائیں گے کہ جس سے کہ بے حیائی کو جو ہے نا وہ بالکل بھی ترویج مسلم معاشرے کے اندر نہ ملے. تو جیسے کہ لکھا کہ اس کو جو ہے وہ یعنی دوپٹہ پہنا جائے، پہننے کا کہا جائے گا اس کو، اور نماز کے اندر جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کی جو صفیں ہیں اس کے اندر کھڑا ہوگا یا کھڑا ہوگی، جو بھی ہے وہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ ہوگی، تو اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جائے گا. بہرحال تو یہ پڑھ کر کے اب ہم اگلا موضوع شروع کر رہے ہیں جو کہ کتاب کا تقریباً آخری تو نہیں، سیکنڈ لاسٹ عنوان ہے، سیکنڈ لاسٹ، تو وہ ہے خلاصہ رسالہ. اس رسالے کا یعنی ایک پتلی کتاب ہے نا، یہ تو پتلی کتاب کے لیے رسالے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جریدہ، رسالہ، میگزین. تو اس کا خلاصہ مع جواب بعض شبہات، بعض شبہات کے جواب کے ساتھ ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے نکلنے یا کافر ہونے کے لیے اس کا قصد و ارادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اسی ٹائم پہ ڈلیوری کرنی ہوتی ہے آپ کے چیز کی، صبح کو یہی ہوا تھا. اچھا، ذرا ہولڈ کرنا ہوگا، پاز کر دیجیے پلیز. بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلاصہ رسالہ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 76 سے. تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے نکلنے یا کافر ہونے کے لیے اس کا قصد वह इरादा जरूरी नहीं है। यानी इरादा करना, नियत करना कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हैं वो पढ़ने को सुनने को मिलते हैं कि किसी नौजवान ने, किसी बच्ची ने, किसी औरत ने, किसी मर्द ने ये ऐलान कर दिया अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में कि मैं इस दीन को छोड़ रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी थिंग टू डू विद दिस रिलीजन। ठीक है, तो ये होता है नीयत के साथ इरादा करना, यानी दीन को छोड़ना, ठीक है, मुर्तद हो जाना। फरमा रहे हैं कि दायरे इस्लाम से निकलने या काफिर होने के लिए कसद व इरादा जरूरी नहीं है। शैतान अकबर, क्योंकि शैतान असगर बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी टीम होती है शैतान की, तो इबलीस जो है वो सबसे बड़ा, यानी सबसे इनका उम्र में बड़ा तो नहीं पता हमें, लेकिन हरकतों में सबसे बड़ा जो है ना वो इबलीस ही है, सरगना इनका। तो शैतान अकबर इबलीस ने काफिर होने का इरादा नहीं किया था, ठीक है, कि मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला के सामने सुपुर्दगी को छोड़ रहा हूँ, मैं इस दीन को छोड़ रहा हूँ और मैं काफिर हो रहा हूँ, बल्कि उसकी हरकत ने उसको काफिर बना दिया था। उसी के मुताल्लिक कुरान मजीद में आया है, वकाना मिनल काफिरीन, और था वो काफिरों में से। यानी ठीक, तो करने अव्वल में, यानी बिल्कुल पहली जो जनरेशन थी, पहला जो दौर था, जमाना नबी अलैहिस्सलाम वाला जमाना, इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो करने अव्वल में मानईन ज़कात और मुसैलमा कज़्ज़ाब के, द फर्स्ट शैतान वाज जान, जान किसकी जान थी, फर्स्ट शैतान वाज जान, वाज इबलीस जी, ठीक है। तो करने अव्वल में मानईन ज़कात और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुत्तबईन ने भी मिल्लत इस्लामिया को छोड़ा नहीं था, मगर बइजमाए सहाबा इस्लाम से खारिज करार दिए गए। ठीक है, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए जो है कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी कि ये काफिर हो गए हैं, ठीक है, इस्लाम वो इबलीस के लिए तो आयत नाजिल हो गई ना कि भाई वो काफिरों में से है, और लेकिन मुसैलमा कज़ाब के लिए तो कोई आयत ही नहीं नाजिल भाई। चले मुसैलमा कज़ाब के लिए कह सकते हैं, यहाँ भी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा ऐसा उसके बारे में फरमा दिया था अपने विसाल से पहले, लेकिन व्हाट अबाउट मानईन ज़कात? मानईन ज़कात के बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम की कोई हदीस भी नहीं है ना कि ये लोग ऐसे होंगे और फिर तुम इनको इनके खिलाफ जो है वो जिहाद करना, और ये मानईन ज़कात के खिलाफ तो कोई हदीस भी नहीं, तो कैसे फिर वो उनके खिलाफ क्यों सहाबा कराम ने जहाद किया और उनको क्यों दार इस्लाम से खारिज करार दिया? इजमाए सहाबा का इत्तेफाक हो गया इस बात के ऊपर कि वो दार इस्लाम से खारिज हो गए हैं। तो वजह यह है कि अगर तावील के साथ इनकार करने को मुतलकन इनकार और तकजीब से खारिज करार दिया जाए, ठीक है, जो कि इस किताब का असल मौजू था, बिल्कुल शुरू से हम ये बात करते आ रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो कोई ऐसी बात करता है जिससे कि लगता हो कि भाई उसने इस्लाम का इनकार कर दिया है, ठीक है ना, उसने किसी बुनियादी अकीदे का, कतई अकीदे का या कतई हुक्म का जो है वो इनकार कर दिया है, तो अब अगर वो उसकी तावील बनाता है तो फिर हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, ठीक है, अगर वो अगर तावील कर रहा है ना अपने काम की तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हजरत इसके बारे में फरमा रहे हैं कि नहीं, अगर तावील के साथ इनकार करने को मुतलकन इनकार व तकजीब से खारिज करा दे दिया, यानी जो भी अपने गलत बात का जो है वो तावील करे तो उसको जो है वो हम यानी इनकार व तकजीब में शुमार नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फरमाते हैं कि अगर तावील के साथ इनकार करने को, यानी किसी मुतलक क्या कहते हैं उसको, इनकार करने के किसी चीज़ का इनकार करता है तो मुतलकन इनकार और तकजीब से खारिज करार दे दिया जाए, तो फिर दुनिया में कोई बड़े से बड़ा काफिर भी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा काफिर, अब आप सुनिए, बड़ी बड़ी अहम इबारत है ये, बल्कि बुत परस्त और यहूद व नसारा सभी को मुसलमान कहना पड़ेगा, ठीक है, सो शैतान इज ऑल्सो मुस्लिम लाइक दिस। वही तो सुनिए ना अभी जरा। अब नौजवान होने का मतलब ये कुछ थोड़ी है कि आप कुर्ते फाड़ने के साथ साथ जो है वो क्लास में भी जो है वो ये शुरू कर दें कुर्ते फाड़ने। कुर्ते फाड़ना एक अलग चीज होती है। अब ये एक अगली जुमला हमने सुनना नहीं है और पहले से जो है उसके बारे में सवाल करना शुरू कर देना, तो अब इतना भी नौजवानी मत दिखाएं भाई। ठीक है आप हैं नौजवान, हम जानते हैं आपको। ठीक है तो थोड़ा तहम्मुल के साथ ना। तो फरमाते हैं कि बुत परस्त और यहूदो नसारा सभी को मुसलमान कहना पड़े, क्योंकि शैतान इबलीस ने ना कभी खुदा का इनकार किया ना उसकी खुदाई का इनकार किया। खुदा का इनकार तो एथियस्ट होता है ना, उसने खुदा का नहीं, उसने खुदाई का भी इनकार नहीं किया, यानी सबसे बड़ा है इसका भी इनकार नहीं किया उसने। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने इसका इनकार नहीं किया कि नहीं अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, ये नहीं कहा शैतान ने। ठीक है ना, ना उसकी किसी सिफत का उसने इनकार किया। गौर करें इन बातों के ऊपर, बड़ी अहम बातें। अल्लाह ताला की किसी सिफत का शैतान इबलीस ने इनकार नहीं किया, किसी सिफत का इनकार नहीं किया, बड़ी अहम बात है ये। वो खालिक मालिक रहीम वदूद रहमान, ये सारी सिफात हैं अल्लाह ताला की ना, और भी बहुत सारी सिफात हैं अल्लाह ताला की, उसने किसी सिफत का इनकार नहीं किया, बल्कि उसने तो सिर्फ गैरुल्लाह को सजदा करने से इनकार किया था। ठीक है, गैरुल्लाह को सजदा करने से इनकार किया था, यानी कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात करी थी उसने। तो फरमाते हैं कि वो तो ये कह सकता है कि मैं तो मुवाहिद आजम हूं, सबसे बड़ा मुवाहिद। मुवाहिद कहते हैं जो तौहीद पर कायम होता है, तौहीद पर कायम होने वाला, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा है, राइट। तो वो तो कह सकता है कि मुझसे बड़ा तो मुवाहिद आजम कोई हो ही नहीं सकता, कि मैंने तो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने के लिए अल्लाह का हुक्म भी नहीं माना, अल्लाह का हुक्म भी नहीं मैंने माना, अल्लाह तक का हुक्म मैंने नहीं माना। ठीक है, तो मुझसे बड़ा मुवाहिद आजम कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी इस सरकशी को तकजीब ही के हुक्म में रखकर कुफ्र अजीम करार दिया। इसी तरह ठीक है, यानी भाई अल्लाह ताला खुद डिसाइड करेंगे ना कि कौन जो है वो मेरी तौहीद को मानने वाला है, कौन मेरी तौहीद को नहीं मानने वाला। तो हुक्म को मानना, वो कहते हैं ना अल अमरु फौक अल अदब है, अल अमरु फौक अल अदब, जो हुक्म होता है ना वो अदब से भी ऊंचे दर्जे की चीज होती है। ठीक है ना, उसी तरीके से कोई कहे मोहब्बत, ये सूफी सूफी साहब राइट, वो डांस वाले सूफी राइट, और दूसरे इस किस्म के जो वो वाले सूफी की बात हो रही है, वो कहे कि जी हम तो अल्लाह की मोहब्बत में, हमारा तो रग रग और रेशा रेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबा हुआ है, हम तो हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में रहते हैं, तो हमारे लिए जो है ना वो हुक्म जो है वो इतना अहमियत नहीं रखता। वो हजरत जी हमारे कहते हैं ना हजरत पंजाबी में कि तुम क्या गए, और तुम्हारा तो पंज वेले, हमारा तो हर वेले, यानी तुम तो 5 वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदे करते हो ना, हम तो हर वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदे करते रहते हैं, यानी हम तो असल आशिक तो हम हैं, हमें 5 वक्त के सजदा करने की कोई थोड़ी जरूरत है, हम तो हर वक्त ही सजदे में रहते हैं, हम तो पलकों से सजदा करते हैं, हम तो अपने जबीनों से सजदा वजदा तो तुम लोग करते हो, वो तो छोटी चीज है राइट, हम तो पलकों पलकों को बिछाते हैं, जब हमारे रब का तज़किरा होता है हम पलकों को बिछा देते हैं, हम जो है वो लेट जाते हैं, हम जो है वो थरकना शुरू कर देते हैं, हमारा रुआ रुआ जो है ना वो हरकत में होता है, और तज़क्कुर भी होता है और तहर्रुक भी होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, तो हमें 5 वक्त की नमाज की थोड़ी जरूरत है। नहीं, अल अमरु फौकल, इस तरह के दावाए मोहब्बत, ये जो दावाए मोहब्बत है ना इनसे ऊंचा है अमर। इसी वजह से हमारे मशाइख फरमाते हैं तसव्वुफ जो है ना ये शरीयत की लौंडी है, तसव्वुफ शरीयत की लौंडी है। शरीयत क्या है? अवामिर और नवाही, अल्लाह के अहकामात, ये शरीयत। और तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ को आमतौर पर यही समझा जाता है कि जी मोहब्बत प्यार और कैफियात और फलाने ढमकाने से, है ना। नहीं, ये अफजल नहीं है, अफजल शरीयत। ठीक है, अफजल चीज शरीयत है। तो तसव्वुफ में कैफियात आपको मिल रही हैं लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ शरीयत, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ शरीयत। ठीक है, तो इसको कहा जाता है तसव्वुफ शरीयत की लौंडी है। लौंडी का मतलब यहाँ पे नाउज बिल्ला वो वाली लौंडी नहीं, बल्कि खादिमा है, खादिम। तसव्वुफ तो शरीयत को सर्व करने के लिए, सर्व करने के लिए, खिदमत करने के लिए तसव्वुफ शरीयत का काम करती है। ठीक है ना, नॉट के शरीयत जो है वो तसव्वुफ का काम करती है। ठीक है, उसी तरह से और भी हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा जी सियासत जो है ना वो भी शरीयत की लौंडी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वैसे आप कयास के हिसाब से तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सियासत भी शरीयत की लौंडी है, सियासत के अंदर भी शरीयत से बालातर कोई अमल नहीं किया जा सकता। बहरहाल तो इबलीस तो ये कह सकता है कि मैं तो मुवहिद आजम हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी इस सरकशी को तकजीब ही के हुक्म में रखकर कुफ्र अजीम करार दिया। ठीक है, इसी तरह आम बुत परस्त अपने बुतों की परस्तिश की कभी ये तावील करते हैं कि हम बुतों को खुद खुदा नहीं मानते, बल्कि उनको कुर्ब इलाही का जरिया समझकर रजा जोई के लिए उनकी इबादत करते हैं। यानी हम जो बुतों की इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। खुद कुरान करीम ने बुत परस्तों की इस तावील को जिक्र करके नाकाबिले इल्तिफात करार दी, यानी इसकी तरफ बिल्कुल इल्तफात ही नहीं किया जाएगा, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको कंसिडर किया जाए इनकी इस तावील को। ठीक है, चुनाचे कुरान मजीद के अंदर इरशाद है, मा नाबुदुहुम, यानी ये जो 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 अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वाले लोग होते हैं ना, तो इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, कान खोल कर सुन लो, बिल्कुल क्लियर हो जाओ उस बारे में कि अल्लाह के लिए दीन खालिस है, उसके अंदर कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अल्लाह ताला मिलावट बर्दाश्त नहीं कर, खालिस दीन अल्लाह के लिए। ठीक है, लिल्लाहि अद्दीनुल खालिस। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला वल्लज़ीन तखज़ू मिन दूनिही औलिया, ठीक है ना, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके अपने सरपरस्त बना लिए, अपने दोस्त बना लिए, अपने सपोर्टर्स बना लिए, औलिया बना लिए अल्लाह ताला को छोड़ करके, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की निस्बत के बगैर उन्होंने किसी को अपना दोस्त बना लिया। ये जो अल्लाह वालों को दोस्त बनाना होता है, ये जो बीवी को दोस्त बनाना होता है, शोहर को दोस्त बनाना होता है, औलाद को दोस्त बनाना होता है, और ईमान वाले को दोस्त बनाना होता है, मुसलमान को दोस्त बनाओ, ये सब मिन दूनी ही नहीं होता, ये अल्लाह की निस्बत से दोस्ती होती है, और काफिर के साथ जो दोस्ती होती है या उसको जो अपना सपोर्टर बनाना होता है ना, ये मिन दूनी ही अल्लाह ताला को छोड़ करके औलिया बनाना कहलाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके अपने औलिया बना लिए ना, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हुए, ये जो है ना ये महजूफ इबारत है, कहते हुए, क्या कहते हुए, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम तो इनकी इबादत करते हैं, हम नहीं इनकी इबादत करते हैं इल्ला, सिवाय इसके कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर देंगे, राइट, अल्लाह ताला के मुकर्रब बना देंगे ये, ठीक है, हम इस वजह से इनकी इबादत करते हैं। तो औलिया बनाना, अल्लाह को छोड़ करके औलिया बनाना, अल्लाह की निस्बत के बगैर किसी को अपना सपोर्टर बनाना, इसी को उनकी इबादत करना करार दे, इसी को उनकी इबादत करना करार दे। तो हम तो बहैसियत कौम मारेगा सारे के सारे, क्योंकि हम तो यही कर रहे हैं, किसी सुपर पावर को अपनी और अपना औलिया बनाया हुआ है, अपने औलिया, राइट, अपने सपोर्टर्स, अपने जो है वो हम उनके साथ अलाइंड हो जाते हैं सुपर पावर, दुनिया वाली सुपर पावर्स के साथ। ठीक है, तो भाई वो तो कहते हैं कि माँ ना अपना आबुद है, ठीक है ना, ये तो इबादत के दर्जे में चीज हो जाती है। तो फरमाते हैं कि और कहीं ये तावील करते हैं कि ये बुत बराह रास्त खुदा नहीं है बल्कि खुदा की मिल्क है, यानी ये खुदा नहीं है बल्कि खुदा की मिल्क है, खुदा की क्रिएशन है, खुदा की प्रॉपर्टी है ये, मगर गायत तकर्रुब की वजह से ये भी इल्म व कुदरत वगैरह में खुदा के शरीक है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ना इनको अपना पार्टनर बना लिया है, अपने साथ शरीक कर लिया है अपनी खुदाई के, हदीस में है, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने ये वाली बात, ऊपर वाली बात तो अल्लाह ताला ने फरमाई ना अपने कुरान मजीद के अंदर, और ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि मुशरिकीन अरब अपने हज में बतौर तलबिया कहा करते थे ला शरीक अलक, जैसे हम कहते हैं ला शरीक अलक, वो भी कहते थे ला शरीक अलक, लेकिन आगे से उसमें ऐड करते थे इल्ला शरीकन हुवा लक, ठीक है, कि तेरा कोई शरीक नहीं बजुज उसके जो तेरी ही मिल्क से है, यानी बुत वगैरह, इल्ला शरीकन हुवा लक, यानी कि जिसको तूने अपना शरीक बना लिया, ठीक है, जिसको तूने शरीक कर लिया, अपनी ही मिल्क में से दे रहे ही लिए है वो, लेकिन दोनों इसको शरीक कर लिए, इल्ला शरीकन। ठीक है, तो ये वो कह जो कहते थे, तो इसको क्यों रद्द कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों कहा कि भाई ये शिर्क है और ये काबिले माफी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी इनके पास कोई दलील नहीं थी। ये जो ये काम करते थे ना, ये जो बात कहते थे ना कि जिसको तूने शरीक बना लिया, या ये कि भाई उसके जो तेरी ही मिल्क में से है, यानी बुत वगैरह, ठीक है, तो इनके पास कोई दलील नहीं थी कि ये कहां से इनको ये बात बता दी गई। ठीक है, किसने कहा है कि अल्लाह ताला के जो है ना ये शरीक है? क्या अल्लाह के रसूल ने ये बात आकर के कही तुम्हें? ठीक है, कहाँ से ये दलील है क्या तुम्हारे पास? तो इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद के अंदर ना इस तरह की बात करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा लहुम बिही इल्म, बा मा लहुम बिही मिन इल्म वला लि आबाहिम, इनके पास इल्म तो नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम सूरह कहफ के अंदर है ना कि इन्होंने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि तखदु वलदा, अल्लाह ताला ने जो है अपना बेटा बना लिया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मा लहुम बिही मिन इल्म, इनके पास इल्म नहीं है इस चीज का कि अल्लाह ताला ने इनको ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया, और ना इनके बाप दादाओं के पास ये इल्म था। इल्म तो वो होता है ना जो कि किसी इल्म की सोर्स से आपको मिलता है, इनके इनके पास ये इल्म कैसे आया? हमने तो इनको ये नहीं बताया, हमारे नबी ने तो इनको ये बात नहीं बताई, अपनी तरफ से उन्होंने घड़ लिया आई। ठीक है, तो ये जो घड़ी हुई बातें होती हैं ना, कॉन्कॉक्टेड जो बातें होती हैं अपनी तरफ से, तो इनकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, अलगर्स बुत परस्त और मुशरिकीन भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सरीह मुखालफत नहीं करते थे, बल्कि तावील की राह अख्तियार करते। ठीक है ना, यानी सरी मुखालफत ला इलाहा इल्लल्लाह की नहीं करते, बल्कि तावील की राह इख्तियार करते हैं, यानी अपने लिए जो है ना वो लल्लू पंजू किस्म की, कहते हैं ना कुछ लोग लल्लू पंजू, लंगड़ी लूली किस्म की, अपने लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं, हुज्जत बनाना भी इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुरान और हदीस ने ऐसी तावीलात बातिला को तकजीब व इनकार ही का मुरादिफ करार देकर उन सबको काफी लिखा है। ठीक है, क्योंकि कुरान हदीस की तसरीहात दरबारे तौहीद ला शरीक लक से किसी फर्द के इस्तिस्ना की मुतहम्मिल नहीं है। ठीक है, यानी कुरान मजीद और हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ये ला शरीक लक के बारे में बता दी गई है ना, तो उसके अंदर अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई एक्सेप्शन निकालने की उसके अंदर से। ठीक है, तो इल्ला कोई चीज नहीं है उसके अंदर, इल्ला के बाद उसका मुस्तस्ना मिनहू कोई कोई चीज नहीं। ठीक है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का उमूम अपने जाहिरी मानी पर बिला किसी तख्सीस व इस्तिस्ना के उम्मत इस्लामिया का इजमाई अकीदा है ना, जैसे इसका जाहिरी मानी है ना, तो अब इसके अंदर कोई यानी वो नहीं है, इसके अंदर मजीद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, तो नहीं इसके अंदर कोई फलानी एक्सेप्शन निकल सकती है, और इसके अंदर फलानी भी जो है ना वो एक एक्सप्लेनेशन बन सकती है इसकी, और इसका दूसरा मानी भी निकल सकता है, ये जो है वो जू मानी किस्म का लफ्ज है, या इसके और भी मानी निकाले जा सकते हैं। नहीं, बल्कि ये बिल्कुल मुहकम चीज, मुहकम जिसका बिल्कुल सेट मानी, और इसमें किसी किस्म की शुभ शुभ की गुंजाइश नहीं। ठीक है, ना तो नस का कोई गुंजाइश है, ये नस हो सकती है वाली चीज, कल को जो है ना वो अल्लाह ताला कोई और उसूल भेज देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय कोई और अल्लाह ताला कोई उसूल भेज देंगे, नहीं नस हो ही नहीं सकता। नस का मतलब होता है एब्रोगेट कर दिया जाए किसी प्रिंसिपल, नस की कोई गुंजाइश नहीं इसके अंदर। ठीक है, और ना जो है वो एक्सेप्शन की है इसके अंदर कोई गुंजाइश। ठीक है, क्या लिखा है आपने भाई, फॉर दिस टाइम पीरियड कैन बी से कादियानी काफिर बिकॉज दे ऑल्सो गिव तावील फॉर देयर मिर्ज़ा, क्या आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कैन भी से कादियानी काफिर, आप अभी भी इस बारे में मुतजबजब हैं भाई? कादियानी काफिर है, और आप मुझसे इजाजत क्यों लेना कादियानी काफिर कहने की? अजीब बात कर रहे हैं। इसी तरह जो शख्स आयत खातम नबीयीन या हदीस ला नबी या बादी में उम्मत मुस्लिमा के इजमाई अकीदे के खिलाफ किसी तख्सीस व इस्तिस्ना की राह निकाले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता मगर बजुज उसके जो जिल्ली व बरूजी तौर पर खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐन या जिल हो, تو یہ در حقیقت مشرکین عرب کی اسی تاویل کا چربہ ہے جو وہ اللہ شریک ہو الگ سے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, فور اپروف. ہاں بھائی دیکھیں, ہماری ایک طالبہ صاحبہ نے نا ہمیں میسج لکھا کہ جی ان کی کوئی دوست ہے پاکستان کے اندر, تو وہ ان کی دوست ان کو کہہ رہی ہیں کہ ختم نبوت کا ایک کورس ہو رہا ہے, شبان ختم نبوت, ہمارے دوست ہیں ہم جانتے بھی ہیں ان کو. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ ایک ختم نبوت کا کورس کروا رہے ہیں, تو تم اس کورس میں آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی کیا مجھے کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت مصروف ہیں آلریڈی جو ہے, وہ پڑھتی پڑھاتی وغیرہ کافی ان کی مصروفیات ہیں, گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس وجہ سے ساجد نے کہا کہ آپ اپنے دوست سے کہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک ختم نبوت کا کورس ہے, ہمارے یہاں بھی ایک ختم نبوت کا کورس ہو رہا ہے, تو وہ اس کورس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ کے دوست نے آپ کو دعوت دی شبان ختم نبوت کے کورس کی طرف, تو آپ بھی ان کو دعوت دے دیں. حنانہ سینٹر آن لائن کے جو ہے وہ بھی ایک ختم نبوت کا کورس ہو رہا ہے. اب اس سے پہلے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کون سا ختم نبوت کا کورس ہے, ان کا یہ جو ایمان اور کفر کی کتاب ہے نا, یہ کتاب ہے ہی ختم نبوت کا کورس, یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ ختم نبوت کے لیے کتاب. ٹھیک ہے نا, اور اس ختم نبوت میں صرف قادیانیوں کے کفر کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی جو باطل تعبیرات ہیں ان سب کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں قادیانی بھی کورڈ ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ پرویزی بھی کورڈ ہیں, اس کتاب کے اندر, اس کتاب کے اندر وہ مہدویی بھی کورڈ ہیں. یہ مہدوی ایک بھی بالکل قادیانی طرز کے اوپر ایک پوری کی پوری جماعت پاکستان کے اندر موجود ہے, جن کے دلائل کو مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کر کے جو ہے وہ قادیانیت کی بنیاد رکھی. یہ شبان ہی کے ہمارے مولانا صاحب ہیں, انہوں نے یہ آرٹیکل ابھی لکھا ہے, ابھی بالکل ریسنٹ یہ آرٹیکل. اور یہ جو مہدوی ہے نا پاکستان کے اندر, ان کو قادیانی ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا, کسی کو پتا بھی نہیں ہے ان کا, کہ یہ بھی قادیانی ہی لیول کے لوگ ہیں, لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں. اور یہ بطور مسلمان کے رہ بھی رہے ہیں, اور بطور مسلمان کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کے طور طور طریقہ سب کو بھی استعمال کر. تو حضرت نے اپنے آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھئی ان کو بھی قادیانیوں کی طرح کافر قرار دینے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے نا, یہ پوری کی پوری ختم نبوت کا کورس ہے, پورا کا پورا ختم نبوت کا کورس ہے. اور یہ ختم نبوت کا کورس صرف قادیانیوں کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ ہر اس قسم کے جو باطل فرقے ہیں وہ سب کو کور کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت نے یہاں پر جو خاص یہ والا پیراگراف ہے نا, یہ پیراگراف پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ اس کے جو فالوورز ہیں, اس کے ماننے والے, وہ اس کو ذلی اور بروزی نبی کہتے ہیں. تو ذلی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذل جو ہے وہ سائے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاں بھی یہ نبی علیہ السلام ہیں تو نہیں, لیکن یہ نبی علیہ السلام کا سایہ ہے, اور سایہ جو ہوتا ہے نا وہ اصل ہی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. بھائی کہاں سے لے کر کے آگے تم سایہ, رائٹ؟ یہ یعنی کوئی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس جھوٹ بولتے ہیں سارا کا سارا. ٹھیک ہے, اور بروزی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ریپلیسمنٹ میں کوئی دوسرا شخص ظاہر ہو جائے, ریپلیس کر لے کوئی اس کو. ٹھیک ہے نا, تو وہ الٹے سیدھے الفاظ لگا لگا کر کے جو ہے نا وہ اپنے جسٹیفیکیشن کریٹ کرتے ہیں کہ ہاں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ بھی ذلی نبی ہے اور بروزی نبی ہے اور الٹے سیدھے چیزیں. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے انہوں نے؟ کین یو پلیز ایکسپلین ہاؤ از ختم نبوت این آنر فار آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاؤ از ختم نبوت این آنر فار آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری نبی ہونے میں اعزاز کیا ہے؟ آخری نبی ہونے میں تو بہت بڑے اعزازات ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہونے میں یہ صرف یہ جو ختم نبوت کا سارا چیپٹر ہے نا, اس ختم نبوت کی ساری ساری جو باتیں ہیں, ساری محنت ہے, یہ صرف نبی علیہ السلام کے اعزاز سے متعلق نہیں ہے کہ بھئی وہ بس نبی علیہ السلام کو ایک ٹائٹل مل جائے گا اور ایک جو ہے نا وہ ختم نبوت آخری نبی ہونے کے اوپر جو ہے نبی علیہ السلام کی عزت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور اگر نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانا, سیکنڈ لاسٹ نبی مان لیا, تو نبی علیہ السلام کی عزت تو بہت ہوگی, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے, बतौर नबी ईसा अलैहि सलाम की भी इज्जत है और यहया अलैहि सलाम की भी इज्जत है और जो है वो मूसा अलैहि सलाम की भी, बल्कि ठीक है नबी अलैहि सलाम की इज्जत जो है वो उलुल आजम अंबिया में भी हम मानते हैं, ठीक है ना। यानी ना सिर्फ ये कि हम आप सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, जैसे कि यहया अलैहि सलाम, जकरिया अलैहि सलाम और सुलेमान अलैहि सलाम और दाऊद अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम, बल्कि नहीं नहीं हम नबी अलैहि सलाम को उलुल आजम अंबिया में से भी मानते हैं, जैसे कि आदम अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम और इब्राहिम अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम और नबी अलैहि सलाम। तो भाई एजाज तो बड़ा सब, यानी पूरा एजाज दे रहे हैं नबी अलैहि सलाम को, उलुल आजम नबी, बस आखिरी नबी नहीं मानते, तो कौन से एजाज के अंदर कमी आ गई नबी अलैहि सलाम की? नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजाज, बल्कि नबी अलैहि सलाम ने जब बता दिया कि मैं आखिरी नबी हूं, हदीसें मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर, नबी अलैहि सलाम को खत्म आखिरी नबी बता दिया, तो अब अगर किसी दूसरे नबी को आप मान लेते हैं तो फिर क्या कंक्लूजन निकलता है इसका? नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, कुरान मजीद भी झूठा है और नबी अलैहिस्सलाम ने भी नाउज बिल्ला गलत बात फरमाई। अगर किसी दूसरे नबी को मानते हैं उसके बाद, नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद किसी दूसरे को नबी मानते हैं, ठीक है ना, और फिर जिसको नबी मान रहे हैं तो भाई क्या तब किसी, और ये सारे क्या है, इसकी तो खैर बहस में पड़ने की भी जरूरत नहीं है कि नेक आदमी नहीं थे बुरे आदमी थे, भाई नेक हो बुरे हो जैसे भी उनको नबी मानना ये नबी अलैहिस्सलाम की झुटलाने का मुतरादिफ है ना। तो आप उस शख्स को, यानी ऐसे ही है कि आप जो है वो किसी को ताज पहना दें, किसी को जो है ना वो बड़े से तख्त के ऊपर बिठा दें, लेकिन साथ साथ ये भी कहें कि यार है वैसे नाउज बिल्ला झूठे हैं, वैसे तख्त पे तो हमने बिठा दिया है इनको, ताज भी बड़ा जबरदस्त किस्म का पहना दिया है और हम इनके आगे जो है ना वो हाथ बांध के भी खड़े रहेंगे, लेकिन जो है ना इनका किरदार ठीक नहीं है यार, ये कभी झूठ भी बोल दिया करते थे, क्या ख्याल है? तो ऐसे एजाज का क्या करेगा फिर वो शख्स? तो ये आखिरी नबी की जिद नहीं है कोई, कि नहीं भाई जिद है भाई इनको नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी मानना है, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारी तफसील आते हैं, ठीक है ना, और कुरान और हदीस मुबारका की आप नफी कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर खातम नबीन और ला नबी आबादी में तावीलात बातिला करने वाले को दायरे इस्लाम से खारिज ना समझा जाए तो फिर बुत परस्त और मुशरिकीन को, बल्कि उनके मुअल्लिम व इमाम इबलीस को भी दायरे इस्लाम से खारिज काफिर नहीं कह सकते। भाई इट्स द प्रिंसिपल, इट्स द रूल दैट काउंट्स, ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज अबाउट प्रिंसिपल्स, राइट, फॉर्मूलास, इक्वेशंस होती है ना ज्योमेट्री के अंदर, तो आपकी इक्वेशन एक बन जाती है, अब उस इक्वेशन के अंदर आप वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करते रहे तो इक्वेशन तो सेम रहेगी, तो भाई प्रिंसिपल असल चीज होती है ना। तो अगर आपने ये कादियानियों को इस प्रिंसिपल से एग्जेम्प्ट कर दिया तो फिर इसी प्रिंसिपल के मुताबिक आपको बुत परस्तों को और मुशरिकीन को और हिंदुओं को और यहूदियों को और ईसाइयों को और मजूसियों को, हत्ता के इनके इमाम इबलीस को भी इसी इक्वेशन में डाल करके उसको भी जो है वो मुसलमान मानना पड़ेगा, बिकॉज इट्स द प्रिंसिपल, ठीक है। तो फरमाते हैं कि और जो लोग ऐसी तावीलात बातिला करके उम्मत के इजमाई अकायद और कुरान हदीस की वाजह तस्रीहात की तकजीब करने वालों को उम्मत इस्लामिया से अलहदा करने को इसलिए बुरा समझते हैं, ये गौर करें, ये हमारे तबके के लिए, ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ठीक है ना, ये पहले भी वैसे इस तरह के पैराग्राफ्स आ चुके हैं इस किताब के अंदर जो कि खास हमारे तबके के लिए, हमारे तबके से क्या मुराद? सेक्युलरली एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड, है ना, जिनको अंग्रेजी भी साथ साथ थोड़ी बहुत आती है या ज्यादा आती है ना, उर्दू जो है वो सुननी आती है और अंग्रेजी जो है वो बोलनी और समझनी आती है और पढ़नी आती है, ये एक खास तबका है हमारा, और ये तबका अनफॉर्चुनेटली डोमिनेंट तबका है, ठीक है, पूरे इस्लामी दुनिया के अंदर इस वक्त यही तबका जो है ना अपर मिडिल क्लास का तबका, ठीक है, ये राजेह तबका है, तो उनके लिए ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। फरमाते हैं कि जो लोग ऐसी तावीलात बातिला करके उम्मत के इजमाई अकायद और कुरान हदीस की वाज तस्वीहात की तकजीब करने वालों को उम्मत इस्लामिया से अलहदा करने को इसलिए बुरा समझते हैं कि इससे इस्लामी बरादरी को नुकसान पहुंचता है। राइट, काफिर
व्हाट इज
कमजोर
नॉट
पड़ जाते हैं, हमारी कुव्वत कमजोर पड़ जाती है, राइट, उनकी तादाद कम होती है या उनमें तफरका पड़ता है। कहते हैं ना ये उम्मत में जो है वो फिरका बंदियां इन लोगों ने करी हुई, मौलवियों ने फिरका बंदियां करी हुई। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने आज 50 साल पहले जब ये किताब लिखी थी उस वक्त भी इसी किस्म के लोग मौजूद थे और आज भी इसी किस्म के लोग मौजूद हैं जिनको अकीदे से और इन सब चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उनको जो है ना बस एक लेबल चाहिए इस्लाम का, मुसलमान होने का लेबल चाहिए और समझते हैं कि जैसा भी हो वो काफिर के खिलाफ जो है ना वो शीशा पिलाई दीवार बन जाएगा, जैसा भी मुसलमान है। ठीक है, तो फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है ना इस्लामी बरादरी को नुकसान पहुंचने की वजह से किसी को काफिर करार देना जो है वो सही नहीं समझते, उनकी तादाद कम हो जाएगी, मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी या उनमें तफरका पड़ता है, तो उन्हें गौर करना चाहिए कि अगर तफरका और इख्तलाफ से बचने के यही मानी है कि कोई कुछ भी किया करे और कहा करे मगर उसको दायरा इस्लाम से खारिज ना समझा जाए, तो फिर अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास किताब है, हाईलाइट कर लें आगे के अल्फाज को, हाईलाइट कर लें। ठीक है ना, कहते हैं तो फिर इन मुट्ठी भर मुलाहिदा व जनादिका से मिल्लत को क्या सहारा लगता है। राइट, कादियानियों की कितनी तादाद है, हजारों में भी नहीं होगी इनकी तादाद बहुत, राइट, बस 10,000 से ज्यादा दुनिया में कादियानी शायद हों भी ना, इससे ज्यादा उससे कम ही होंगे। ठीक है ना, तो कहते हैं कि इन मुट्ठी भर मुलाहिदा यानी इल्हाद करने वाले और जनादिका से मिल्लत को क्या सहारा लगता है भाई, ऐसी पोच तावीलात के जरिए यानी ये जो इस किस्म की पूछ तावीलात जो आपने बनाई हुई है ना इनके जरिए तो सारे जहान के काफिरों को मिल्लत इस्लामिया में शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसी ही रवादारी करना है तो पेट भर के करी जाए, है? पेट भर के करो भाई जरा, ताकि दुनिया की सारी कौमें और सल्तनतें अपनी हो जाए और ये कुफ्र ईमान की जंग ही खत्म हो जाए, है ना भाई। ये क्या खामखा आपने इसराइल को जो है ना वो काफिर करा दिया हुआ है और इसराइल दुश्मन है और अमेरिका दुश्मन है और कभी कोई दुश्मन हो जाता है कभी कोई दुश्मन है, अरे भाई सारे मुसलमान हैं, राइट, अगर कादियानी मुसलमान है, अगर महदूवी मुसलमान है, अगर ये लोग मुसलमान है ना, तो अमेरिका भी सारा का सारा मुसलमान है, चाइना भी सारा का सारा मुसलमान है, रूस भी सारा का सारा मुसलमान है, हत्ता के इसराइल भी सारा का सारा मुसलमान है। ठीक है ना, तो पेट भर के करो ना अगर करना ही है तुम्हें तो। ठीक है, मैं कोई थोड़ी कह रहा हूँ ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा है भाई, पढ़ लिया किताब के अंदर अगर आपके सामने किताब नहीं है तो। ठीक है, तो मसला ही सारा खत्म हो जाएगा, कुफ्र ईमान की जंग ही खत्म हो जाएगी फिर। लेकिन ये जाहिर है कि इस रोशन ख्याली और रवादारी के साथ कुरान से हाथ धोने पड़े, फिर आपके पास इस्लाम का नाम तो होगा लेकिन कुरान आपको जो है ना फिर बंद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कहता है फमिन कुम काफिरुन वो मिन को मोमिन हो, के बास तुम में काफिर हैं और बास तुम में मोमिन है। ठीक है, तो कुरान ने तो ये ऐलान किया और जिसने हिजबुल्ला और हिजबु शैतान का तफर्रका कायम किया, कुरान ने इंसानियत को तोड़ा है ना ईमान वालों में और कुफर वालों में। ठीक है ना, तो अब अगर आप पूरी इंसानियत को जो है वो ईमान में दाखिल करने की सही कर रहे हैं ताकि जो है वो मसले सारे के सारे खत्म हो जाएं, तो फिर आप कुरान को तो खैर आप क्या करेंगे, अपने आप कुरान से अलग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिसका तकरीबन आधा हिस्सा कुफर और कुफार के साथ जिहाद और खिलाफ से लबरेज है, पूरा का पूरा कुरान जो है वो शुरू से ही सूरह बकरा के शुरू से शुरू हो जाता है, ये ईमान वाले हैं जी, ये काफिर हैं जी, ये जो है मुनाफिक हैं जी, और फिर वो बनी इसराइल के कुफार का जिक्र शुरू हो जाता है और शैतान का जिक्र और सबका जिक्र है, तो ये सारा का सारा जो कुरान तो आधे से ज्यादा इन चीजों से भरा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से जो इंटेलेक्चुअल कुफार होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड ओरिएंटलिस्ट होते हैं, इनको इसी चीज के ऊपर सारा का सारा मसला है। पहले इन्होंने जो है ना वो कुरान को खुद खत्म करने की कोशिश करी कि कुरान को जो है वो जला दो, कुरान को जो है वो पानी में बहा दो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ऐसा जिम्मा लिया हुआ था कि उनको पता चल गया कुरान को तुम खत्म तो नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या, उसके बाद नेक्स्ट इनका क्या था कि जो कुरान को समझने वाले, कुरान का इल्म नबी अलैहिस्सलाम से हासिल किए हुए जो लोग हैं उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो आज तक उनकी मेहनत चल रही है। तो वही हजरत मौलाना मक्की हिजाजी रहमतुल्लाह अहमद बरकात उनकी उन्होंने में बरकत अता फरमाए, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि इनको सहाबा से भी कोई दुश्मनी नहीं, इनको सहाबा से कोई दुश्मनी नहीं, इनको दुश्मनी तो दीन के साथ। और चूंकि सहाबा जो है वो दीन के मुहाफिज हैं, तो जाहिर सी बात है जो खजाने का मुहाफिज होगा उसको पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा, फिर आप खजाने के ऊपर हमला कर सकते, ठीक है ना। उसी तरीके से इनको मौलवियों से भी कोई दुश्मनी नहीं, इनको मौलवियों से भी कोई दुश्मनी नहीं, है ना। मौलवियों से सिर्फ उस वक्त तक दुश्मनी है जब तक वो दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। जिस दिन किसी मौलवी साहब ने कहा कि नहीं जी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा दाना पानी चल रहा है, आप थोड़ा सा और इसके अंदर इजाफा कर दें, है ना, आप मेरा वजीफा बढ़ा दें, मैं कोई हिफाजत मैं बस हूँ, ठीक है मेरा टाइटल है मुहाफिज का, लेकिन मैंने हिफाजत नहीं करनी है, बस उसके बाद दुश्मनी खत्म, है ना। क्या जरूरत है भाई मौलवी के मुंह लगने की, क्या जरूरत है भाई मौलवी को लिफ्ट कराने की। जब मौलवी साहब रास्ते से हट गए तो अब मौलवी से भी हमारी दोस्ती हो गई। ऐसे मौलवी जो रास्ते से हट जाते हैं इनके और दोस्ती कर लेते हैं, उन्हीं को तो उलमाए सू कहते हैं, ठीक है। उलमाए हक की तो तारीफ ही ये है कि वो दीन की हिफाजत से हरगिज हरगिज दस्तबरदार नहीं, और वो दीन की वैसी ही हिफाजत करता है जैसे कि उसके सहाबा कराम से जो है वो दीन मिला है, वो वैसे ही उस दीन की हिफाजत करता है, तभी वो उलमाए हक में शामिल होता है। वरना खाली 8 साल का आलिम कोर्स कर लेने से, या जो है ना वो उलमा जैसी जो है वो टोपी पहन लेने से, या उलमा जैसा इमामा बांध लेने से, उलमा जैसा कपड़े पहन लेने से, और उलमा जैसी किताबें उठा लेने से, वो आलिम हक नहीं बन जाता, बल्कि वो आलिम सू बन जाता है। यहमिलु असफारा कमा सल हिमार यहमिलु असफारा, जैसे कि वो गधे होते हैं कि जिन्होंने अपने ऊपर किताबों का बोझ जो है वो लादा, ठीक है। तो इनको मौलवियों से कोई 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 मसला नहीं है, उनको मसला सिर्फ और सिर्फ इस दीन के साथ है, जो कि शैतान को मसला है और जो कि यहूद को मसला है, जो कि सारे कुफार का मसला है। आखिरी एक पेज रह गया है, खत्म करके आज सिलसिले को मुकम्मल कर लें, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें अगर। तो आगे फरमाते हैं कि ये काफिर बनाना नहीं बताना है। आजकल बहुत से वो लोग जो उसूल दीन से वाकिफ नहीं हैं, मुल्हिदीन के जाहिरी नमाज रोजा वगैरह से मुतासिर होकर उनको काफिर करार देने वाले उलमा पर ये इल्जाम लगाते हैं, लगाया करते हैं कि ये मुसलमानों को काफिर बनाते हैं। हालांकि देखो कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, जकात भी देता है, और हज भी करता है, और तिलावतें भी करता है, और मदद भी करता है, और नारे भी मारता है, और जुलूस भी निकालता है, और ये मौलवी जो है वो कह रहे हैं काफिर है। मजकूर उस सदर दलाइल से वाजे हो गया कि वो किसी को काफिर बनाते नहीं, अलबत्ता जो खुद अपने अकायदे कुफरिया की वजह से काफिर हो जाए उसका काफिर होना मुसलमानों को बताते हैं, बनाते नहीं हैं बताते हैं, इन दोनों में फर्क है। अल्लाह से होने का यकीन दिल में पैदा हो, या तो तालीम हो रही है। अच्छा, खुलासा ये है कि तकजीब रसूल की ये सूरत जिसका नाम जंदका व इल्हाद है, तकजीब व कुफर की बदतरीन और इस्लाम और मुसलमानों के लिए हर कुफर से ज्यादा खतरनाक, हर कुफर से ज्यादा खतरनाक है ये जंदका व इल्हाद। इबलीस जैसा काफिर अकफर इसी किस्म तकजीब की वजह से काफिर करार दिया है, ठीक है ना। यानी इबलीस भी जो है ना वो भी जंदीक है, वो भी मुल्हिद है, नॉट एथियस्ट। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो एथियस्ट का तर्जुमा मुल्हिद से करते हैं, नो, एथियस्ट का तर्जुमा दहरिये से होता है, मुल्हिद जो होता है वो एथियस्ट नहीं होता। मुल्हिद तो दीन में गलत तावीलात करने वालों को कहते हैं, गलत एक्सप्लेनेशंस करने वालों को, जो कि इजमाए उम्मत के खिलाफ एक्सप्लेनेशंस हैं, उस बंदे को मुल्हिद कहा जाता है। तो शैतान क्या है, वो जिंदीक और मुलहिद है। लेकिन ये तकजीब चूंकि साफ तकजीब के रंग में नहीं होती, इसलिए खुद मुसलमान भी इसमें अक्सर धोखा खाते हैं, खुसूसन जबकि उसका मुर्तकिब आम शाएर इस्लाम नमाज रोजा तिलावत और कुरान वगैरह का पाबंद हो। देखिए मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं ना, आप देख लें जरा, टाइम अगर आपके पास हो आप निकालें, शुरू से जो है ना वो पेज पलट पलट करके यहाँ तक आए कि हजरत ने कितनी दफा इस बात को रिपीट किया है कि खुसूसन जिस वक्त वो नमाज रोजा तिलावत और कुरान वगैरह का पाबंद, ये जो अल्फाज है ना, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी किताब के, ठीक है ना। क्यों बार बार रिपीट कर, क्योंकि हमारे जहन में यही गलत फहमी हो जाती है कि जो आमाले सालेहा करने वाला है, अब वो अकीदा जो भी रखता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुसलमान है और बड़ा नेक मुसलमान है क्योंकि आमाले सालेहा कर रहा है। ये हमारे तबके की बहुत बड़ी मुसीबत है कि हम ये सोच हमारे अंदर रासिख हुई भी है, ठीक है। इसलिए जरूरत थी कि कुरान और हदीस और अकाबर उम्मत की तस्रीहात से इसकी असल हकीकत को वाजह किया जाए। सो बहमदुल्ला इस रिसाले में उसकी मुकम्मल तफसील आ गई, जिससे वाजह हो गया कि इस्लाम के कतई और यकीनी अहकाम को बजरिए तावीलात उनके मनसूस और इजमाई मफहूम से फेर कर उसके खिलाफ किसी मफहूम पर महमूल करना दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार दें, तकजीब का मतलब होता है किसी को झूठा करार दें, ठीक है। इसी के जमन में ये भी मालूम हो गया कि हदीस में, यानी ये जो सारी की सारी हमने डिस्कशन करी ना, तो इसके अंदर ये भी फिर बात क्लियर हो गई, यानी दलाइल से वाजे हो गई कि जो अहले किबला की तकफीर को मना किया गया है, जिस हदीस के अंदर मना किया गया है कि जो अहले किबला उनकी तकफीर मत करो, उसका मफहूम ये नहीं है कि जो किबले की तरफ मुंह करे वो मुसलमान है, बल्कि ये शरे इस्लाम का एक इस्तिलाही लफ्ज है। भाई अबू जहल भी इसी किबले की तरफ रुख करके इबादत किया करता था, इसी किबला काबतुल्ला की तरफ रुख करके इबादत किया करता था ना, अबू लहब भी और जितने मुशरिकीन थे। तो अहले किबला का मतलब रुख करके इबादत करना होता ही नहीं, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इसका ये मफहूम नहीं कि जो किबले की तरफ मुंह करे वो मुसलमान है, बल्कि ये शरह इस्लाम का एक इस्तिलाही लफ्ज है जो सिर्फ उन लोगों के लिए बोला जाता है जो इस्लाम के आम शाइर नमाज वगैरह मुसलमानों की तरह अदा करते हों और उनसे कोई कौलो फेल ऐसा सरजद ना हो जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब होती। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। خرجه العبد الضعيف محمد شفيع رضي الله عنه ربيع الثاني 1373। अभी कौन सा साल चल रहा है, 1446, ठीक है। तो 46 ईयर्स ये हो गए, सुभान अल्लाह, ये तो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1954 में ये लिखी है और अब 2024, 75 ईयर्स, सुभान अल्लाह, 75 साल पहले ये किताब लिखी थी। और ऐसी रेलेवेंट है ये इस वक्त हमारे तबके वाले मुसलमानों के लिए कि जैसे कि ये आज किसी ने लिखी, ठीक है। क्या लिखा भाई आपने, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज में कुछ लिखा है कि वल जानना खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारि समूम, और जन्नात को हमने इससे पहले लौ की आग से पैदा किया। जिस आदम इस्लाम इंसान क्या बताए, इसी तरह जिन्नों में से सबसे पहले पैदा होने वाले को जान कहा गया। अच्छा, सबसे पहला, पहले पैदा होने वाले को जान कहा गया, या जिनकी जो है वो जमा नहीं, तो वो आग से पैदा किया गया। अच्छा, नकल ये आपने किसी तफसीर से नकल किया दुनिया, तो फिर ठीक है, तफसीर में इसका यही मफहूम बयान किया है तो ऐसे ही होगा, या ये कि इसके अंदर उलमा का कुछ इख्तलाफ होगा, ठीक है। बहरहाल ये जो इबलीस था, ये पहला जिन नहीं था, ये इबलीस पहला जिन नहीं था, बल्कि जिन्नों की जो मखलूक थी ना, ये बहुत पहले अल्लाह ताला ने पैदा की हुई, ठीक है ना। उनमें से एक इबलीस था जो कि इबादतें किया करता था और आसमान में रहा करता, ठीक है। हत्ता कि कुछ उलमा का तो ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो जिन हुआ करते थे ना, तो अल्लाह ताला उनमें नबी भेजा करते थे जो कि जिन्नों में से हो, ठीक है ना। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम, जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया, अब उसके बाद नबुवत उनकी खत्म हो गई और सिर्फ इंसानों ही में जो नबी आते थे वो जिनों और इंसानों दोनों के लिए होते थे, ठीक है। और कुछ उलमा का ये है कि नहीं, जिनों में नबी नहीं हुआ करते थे बल्कि सिर्फ इंसानों। बहरहाल ये इल्मी इख्तलाफात हैं उलमा के, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को जो हमने पढ़ा, तो इसमें अगर कोई गलती कोताही हुई होगी हमारे इनके बगैर ही, जाहिर है भी हमारे तो नहीं समझ में आता कि कोई ऐसी गलती करी, लेकिन इंसान है, बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, दुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, और इसको पढ़ने के लिए जो हमारे इरादे थे, मकसद थे, अल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी अता फरमाए और इसको अपनी रहमत से, अपनी रजा के बदले कबूल फरमाए, और जितने सुनने वाले आप लोग आए, आपके आने को कबूल फरमाए, और इस पैगाम को जो है वो समझ करके अपनी ज़िंदगी में भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने आल औलाद की, दोस्त अहबाब की, बल्कि पूरी उम्मत में ईमान की मेहनत करने के लिए इस सबब को, इस वसीले को, इस किताब को इस्तेमाल करने की हतुल मकदूर तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।